नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सहअध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब 942 रुपए हो जाएगी। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला है। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरु मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया था। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और कई अन्य भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 15वें ओवर में 2 विकेट खोए और 49 रन बनाए। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।